सकते हो सामने की वजह। हाँ थोड़ा यूँ है, हाँ यूँ यूँ थोड़ा आ जाए, थोड़ा सामने आ जाए, इसको यूँ करके यूँ कर लो, देख लो मैं, ठीक है आ रही आवाज़ आ रही है, बस आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। नहीं नहीं पीछे रखो थोड़ा, एकदम मुंह पे लगता है। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या च काशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कल अपना थोड़ा पहला बोल बाकी था, उसको पूरा करके फिर अपन छठे बोल पर चर्चा करेंगे। ओंकार के संबंध में बोल था और उसमें फिर अंत में ये प्रश्न किया था, चर्चा जहां शुरू है वहीं से। मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि गुरुदेव पूर्वे सामली ने आव्या हता ने, ओंकार की बात चल रही थी, गुरुदेव श्री को ओंकार प्रिय है, ये सब बातें आई थी। तो उसमें उन्होंने फिर प्रश्न किया किसी मुमुक्षु ने कि पूर्वे गुरुदेव पूर्वे सामली ने आव्या हता ने, उसका उत्तर दिया कि हां पोते पूर्वे सामली ने आव्या हता। देखो ये भी कैसी विचित्रता है कि सिमंदर भगवान के समोसरण में साक्षात ओंकार ध्वनि का सौभाग्य मिला सुनने का, और अपन जैसे कितने जीवों का भाग्य इधर जोर मार रहा था कि गुरुदेव श्री सीधे विदेह क्षेत्र से भरत क्षेत्र में पधार गए, ये अपने भाग्य का जोर है ना, नहीं तो ऐसी धर्म सभा और ऐसा क्षेत्र छोड़ करके आने का योग भी कहां बने, लेकिन ऐसा बना। तो एक फिर गुरुदेव की विशेषता, उनके उपयोग की विशेषता कि एक अभिक्ष्ण ज्ञान उपयोग शास्त्र में आवे छे, एवं श्रुतनो ज्ञान गुरुदेव ने अंतर माथी आवतु हतु। वचनामत में एक जगह एक बोल लिया है गुरुदेव ने श्रुतनी लब्धि हती, है ना। देखो तो एक श्रुत की लब्धि का मतलब क्या कि एक शब्द जिनवाणी में आया क्रमबद्ध आया, 308 से 311 नंबर की गाथा, एक शब्द केवल आया जिनवाणी में क्रमबद्ध, और उस एक शब्द में से गुरुदेव ने कितने न्याय खड़े कर दिए, इतने जबरदस्त न्याय खड़े कर दिए कि पर्याय की क्रमबद्धता को सिद्ध किया, आत्मा का अकर्ता स्वभाव सिद्ध किया, आत्मा का ज्ञातापना सिद्ध किया, यानी जितने भी पहलू उसमें से निकल सकते हैं उसी के आधार पर काल और अकाल नय की चर्चा आई, उसी के आधार पर अकाल मृत्यु और काल मृत्यु की चर्चा आई, इन सारे प्रश्नों के समाधान एक क्रमबद्ध शब्द में से निकाले। सर्वज्ञता की सिद्धि क्रमबद्ध के आधार से की, क्रमबद्ध के आधार से सर्वज्ञता की सिद्धि और सर्वज्ञता के आधार से क्रमबद्ध की सिद्धि, और ऐसी जबरदस्त सिद्धि गुरुदेव के द्वारा क्रमबद्ध पर्याय की और सर्वज्ञता की हुई कि अब तक जो लोग सर्वज्ञता की सत्ता को सिद्ध करने के लिए न्याय शास्त्र पढ़ रहे थे, न्याय शास्त्र में सर्वज्ञ की सिद्धि का एक प्रकरण आता है, लेकिन उन लोगों को लगा कि यदि हम सर्वज्ञता की इस तरह सिद्धि करेंगे तो इनकी क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध हो जाएगी, तो उन लोगों ने सर्वज्ञता की व्याख्याएं बदलना चालू कर दी। यानी कैसे कैसे प्रसंग, यदि गुरुदेव का 45 साल का इतिहास अगर हम उठा के देखें तो किस तरह इस जैन तत्व ज्ञान में घटना चक्र ने किस तरह मोड़ लिया है, यह शायद एक स्वर्णिम इतिहास बनेगा कि एक शब्द में से इतने रहस्य और इतने रहस्य खुलने के बाद लोग सर्वज्ञता की व्याख्याएं बदलने लगे। भूतकाल की जानते हैं, भविष्यकाल की तो होगा तब जानेंगे, ऐसा होगा तो जानेंगे, एक साथ जानते हैं, पृथक पृथक नहीं जानते, सशर्त जानते हैं, माने निश्चित रूप से ऐसा होगा ही, ऐसा नहीं जानते, इस तरह की बातें बहुत सारी आने लगी। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे दृष्टि के विषय में, अब खाली दृष्टि, एक दृष्टि के विषय में त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा की जो धुन मची है ना, पुण्य पाप की हेयता का बन, कितने कितने सिद्धांत, और वो कहां से निकलते थे, कि उनके अभिक्षण ज्ञानोपयोग में से निकलते थे। देखो अनुभूति से सारे अर्थ जिनागम के होते हैं, वास्तव में ज्ञानी जन शास्त्र से अर्थ करते हैं ये बात तो ठीक है, लेकिन अनुभूति से वो सारे अर्थ होते हैं। और गुरुदेव का जीवन तो अनुभूति युक्त तो था ही, उसके अलावा उनको शास्त्र का अभ्यास भी कितना जोरदार था। जिनागम का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं, चाहे प्रथमान योग हो, करणान योग हो, चरणान योग हो, द्रव्यान योग हो, न्याय हो, अध्यात्म हो, सिद्धांत हो, कोई क्षेत्र ऐसा बाकी नहीं बचा कि जिस ग्रंथ का स्वाध्याय गुरुदेव श्री के स्वाध्याय में नहीं हुआ हो, है ना। ऐसा बहुत आया था, तो ये यहां पे कहा कि अंतर्माते आवतु हतु तेमने जिनवाणी नु एटलू बहुमान हतु के वाणी नो अर्थ करता थाकता ज न हता। ये प्रसंग भी बहुत बने, शायद आठवीं बार का प्रवचन गुरुदेव श्री का समय सार का पूरा हुआ और थोड़ा समय बाकी, घंटे भर का मान लो प्रवचन हो और 45 मिनट ही हुआ हो, तो अपन लोग तो क्या करेंगे कि चलो आज शास्त्र पूरा हुआ ना, अभी छोड़ो ना भाई, अब कल देखेंगे, कल देखते हैं कल कौन सा शुरू करना है। ऐसा गुरुदेव का नहीं होता था। क्या होता था कि जैसे आठवीं बार का समय सार पूरा हुआ, उसी समय उसी प्रवचन में नौवीं बार के साथ समय सार की शुरुआत होगी। और जिस उत्साह के साथ 19 बार का प्रवचन सुनो, चाहे 13वीं बार का प्रवचन सुनो, जिस उल्लास से गुरुदेव अर्थ करते थे, ऐसा नहीं अरे इतनी बार तो समय सार पढ़ लिया, ऐसा नहीं। और फिर वो बोलते भी थे कि भाई अलग अलग बार पढ़ा जाए ना, तो कोई एक की एक बात आएगी, ऐसा नहीं है, नया 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 चिंतन, क्योंकि जिनागम में तो बहुत भरा है ये निकालने की ताकत। इसलिए कहते अर्थ करते हुए थकते ही नहीं थे, इसमें से तो बहुत है। अभी आप नैरोबी का प्रवचन सुनो, तो 17-18 गाथा का प्रवचन किया तो कम से कम 10 बार फरी थी फरी थी फरी थी फरी थी, ऐसे कर करके वो अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको सदा स्वयं ही जानने में आने पर भी इस लाइन का कितनी बार फरी थी करके अर्थ किया है। ये उनके अभिक्षण ज्ञानोपयोग की खुद दर्शाता है। शास्त्रों के अर्थ तेओश्रीनी वाणी मां एक धाराए निकलिया करता हता, व्याख्यान आपे त्यारे एक शब्द मां आखू ब्रह्मांड खड़ू करता। ये तो एक ज्ञानी के दूसरे ज्ञानी के प्रति कैसा बहुमान है, देखो जरा। ओंकार का बहुमान सहजे अतो जिनवर ते जीव, ये गुरुदेव का पेटेंट वाक्य था, जिनवर ते जीव अने जीव ते जिनवर। आ गया, ये परमात्म प्रकाश के योग सार के प्रवचनों में खास तौर से ये वाक्य बार बार आता है कि धर्म धुरंधर योगिंद्र देव आचार्य भगवान कहते हैं कि हे जीव, तू परमात्मा होने योग्य है ऐसा नहीं, यानी मैं परमात्मा होने योग्य हूं ऐसा नहीं, मैं परमात्मा ही हूं ऐसा चिंतन कर। क्यों, क्या अंतर आया इसमें, होने योग्य और परमात्मा हूं मैं, क्या अंतर आया? कि होने योग्य हूं ये पर्याय का स्वर है, और मैं वर्तमान में परमात्मा हूं, है ना। गुरुदेव श्री बोलते रहे भगवान का भगवान है, आत्मा कैसा है तो बोलते थे भगवान का भगवान है। ये भगवान पना जो प्रकट हुआ ना, कि ये भगवान पना उस भगवान में से आया है, उस भगवान के आश्रय से आया है। अगर ऐसा भगवान पना नहीं होता तो भगवान पना आता कहां से? प्राप्त की प्राप्ति है। बोलते कि नहीं बोलते, कुआ में हो तो अवेड़ा में आवे। तो स्वभाव में था तो वो व्यक्तता हुई, तो स्वभाव वर्तमान में परमेश्वर है। हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, ये तो मांगलिक वाक्य में अपन लोग चलाते हैं ना कई बार, हां तो मैं हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, निर्णय कर, अनुभव कर। तो फिर खुद ही प्रश्न उठाएंगे कि भाई भगवान कहते हैं मानो कि भाई कि प्रभु अभी हम ये तो नक्की कर लें कि आप परमात्मा हो, क्या उत्तर दिया उसका? कि अरे भाई जब तू ये निक्की करेगा कि मैं परमात्मा हूं, यानी अपने परमात्मा सत्ता का तुझे निर्णय होगा, तब तुझे ये भगवान परमात्मा है ऐसा व्यवहार नक्की होगा। निश्चय नक्की हुए बिना व्यवहार कभी नक्की होता नहीं है। ये बहुत सूत्र सूत्र वाक्य गुरुदेव श्री के आए हैं। देखो इसमें से कि बार बार तेमना हृदय माती आवतु हतु, तेमनो द्रव्यज एवं हतु। ओंकार सुनकर के आए, ओंकार के रहस्यों का उद्घाटन इस भाव में किया और आगामी भावों में ओंकार ध्वनि खिराएंगे, ऐसा गुरुदेव का द्रव्य था। एटले सहजे आवु आवतु हतु, तेओ बदाने ओम लखी देता। शास्त्र लेके कोई जाता गुरुदेव के पास, है ना, मेरे पास तो लगभग समझ लो कि पंच परमागम मोक्षमा प्रकाशक ऐसे करीब करीब 20-25 ग्रंथ ऐसे हैं कि जिस पर गुरुदेव के हाथ का लिखा हुआ ओम। कैसे लिखते थे? पेंसिल से यूं करके ओम लिख देते थे। और कभी ज्यादा किसी को लिखना हुआ तो ओम सहज चिदानंद पण लखी आप लखी देता। बस ये बात यहां पर कही। अब छठे नंबर के बोल में देखो एक बहुत मार्मिक प्रश्न है, और वो प्रश्न अपन सब लोगों का होता है, जितना भी मुमुक्षु वर्ग है उन सब मुमुक्षु वर्ग का वो एक प्रश्न होता है, और वो बहुत सरल प्रश्न है लेकिन बहुत गंभीर प्रश्न है। क्या प्रश्न है जरा देखिए, इसमें प्रश्न है आत्माने ओळखवानो अभ्यास केवी रीते करवो। पेज नंबर 18 है भैया। आत्माने ओळखवानो अभ्यास, आत्माने आत्मा को पहचानने का अभ्यास केवी रीते करवो, मैंने वो पद्धति पूछ रहा है। आत्मा को पहचानना चाहिए, ये बात अंदर से जिसको नक्की हुई कि मुझे आत्मा को जानना ही चाहिए, आत्मा को पहचानना ही चाहिए, इस आत्म सब की पहचान के बिना 484,00,000 योनियों का परिभ्रमण मिटे ऐसा नहीं है। अंतर में जिसे ऐसी छटपटाहट लगी हो, ऐसे जीव का यह प्रश्न है। समय सार की छठे नंबर की गाथा में को सो शुद्धात्मेति चेत, वह शुद्धात्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। और आपको पता हो पूज्य गुरुदेव श्री की 91वीं जन्म जयंती, माने उनकी उपस्थिति की अंतिम जन्म जयंती मलाड़ में मनाई गई थी, ठीक है। और को सो शुद्धात्मेति चेत, कि वो शुद्धात्मा कौन है जिसका स्वरूप मुझे जानना चाहिए, इस एक वाक्य पर गुरुदेव श्री ने लगभग आधे घंटे बोला था। मुझे दूसरा कुछ नहीं जानना, मुझे स्वर्ग कैसे मिले, मुझे पुण्य कैसे मिले, मुझे ये सब संयोग कैसे मिले, अरे मुझे जिन मंदिर कैसे मिले, मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे तो एक आत्मा कैसा है, वो शुद्धात्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए। सात तत्व के मुझे नहीं जानना, सब जान लिया वो तो, आत्मा कैसा है। को सो शुद्ध आत्मेति चेत। इसी तरह यहां पर प्रश्न किया
कि आत्मा को पहचानने का अभ्यास किस प्रकार करना, यानी यह प्रश्न अगर हमारे अंदर में उठा हो तो कब उठेगा यह प्रश्न, कि जब हमें आत्मा को पहचानने के अभ्यास की आवश्यकता ज्ञात होगी, लगेगा कि नहीं आत्मा को पहचाने बिना हमारा कोई काम सधने वाला नहीं है, तभी यह प्रश्न उठेगा। तो फिर कहें आगे, एक प्रश्न तो यह किया, फिर दूसरा, शू बाहरना काम छोड़ी देवा, सब छोड़ दे बाहर के काम, बस आत्मा को पहचानने के लिए लग जाए, हैं? होता है कि नहीं? अपन लोगों के ये बताओ, ये अपना प्रश्न है कि नहीं? अच्छा बताओ, विचार करो, ये सब अपना प्रश्न है कि नहीं? अपन लोग प्रश्न करते कि नहीं करते? बहुत से लोग कहते हैं भाई साहब सम्यक दर्शन कैसे हो, जरा बताओ, मैं तुझे सम्यक दर्शन चाहिए का आत्मा चाहिए? सम्यक दर्शन चाहने वाले को सम्यक दर्शन नहीं होता, और जिसे आत्मा प्रिय है उसे सम्यक दर्शन हुए बिना नहीं रहता। तो सम्यक दर्शन के पीछे मत दौड़, आत्मा के पीछे पड़। सम्य दर्शन तेरे हाथ, अब सम्य दर्शन तो वरमाला लिए तेरे पास पीछे पीछे दौड़ेगा। मुक्ति के पीछे मत दौड़, सम्य दर्शन के पीछे ही नहीं, मुक्ति के पीछे भी तू मत दौड़, क्योंकि तू मुक्त स्वरूप तत्व है। मुक्ति तेरा वरण करे ऐसा तू तत्व है, तू मुक्ति के लिए पागल मत हो, मुक्ति तेरे लिए पागल हो ऐसा तू तत्व है। यह है बात। तो क्या करें, सब छोड़ दे बाहर के काम? बहुत अच्छा समाधान इसमें दिया है, गजब का समाधान है। देखो भाई, पोते अंदर ती खटक राखी ने वाचन करवानो टाइम गोती लेवू। ब्रह्म श्री के शब्दों में खटक शब्द बहुत आता है, आता है कि नहीं? अंदर से खटका तो लगा ही रहता है, एक खटक, कोई भी काम करते हो अपन, खटक, वो जो खटक रहती है ना, वो अपने को मर्यादा से बाहर नहीं जाने देती। अगर हमें आत्म स्वभाव को प्राप्त करने की खटक हो, तो भले ही हमारे जीवन में गृहस्थ के योग्य कार्य भी होंगे, भूमिका है, क्योंकि भावुकता के उपदेशों से कोई मतलब नहीं है कि नहीं नहीं सब छोड़ के तुम तो आत्मा का ही करो। वो कोई, वो जो जो चीज संभव नहीं है उस भूमिका में, जो चीज संभव नहीं है उसकी बात करना उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हमारे को आत्म स्वभाव को प्राप्त करने की, आत्म स्वभाव को पहचानने की खटक होगी, तो कैसे भी प्रसंग में हम खड़े हों आत्मा के लिए समय निकाल ही लेंगे। लगनी चाहिए अंदर से वास्तविक खटक। अरे खटक नहीं लगे तो 11 अंग नौ पूर्व के पाठी बन जाएं, नौवें ग्रेवक जाने योग्य कसाय की मंदता कर लें, है ना? इससे क्या होगा कि ज्ञान का विकास बहुत हो जाएगा, कसाय की मंदता बहुत हो जाएगी। अरे यहां से मर करके नौवें ग्रेवक में चला जाएगा, लेकिन मिथ्यात्व का बीज साथ में लेकर के जाएगा, निगोध का बीज साथ में लेकर के जाएगा। आत्मा की खटक नहीं होगी। आत्मा की प्राप्ति की बात तो बहुत दूर है, अभी तो आत्मा की खटक भी नहीं होवे, कैसे काम चले, है ना? लगे कि भैया ये तो का, इसके खटक का मतलब क्या होता है कि इसके बिना मेरा काम चलने वाला नहीं है, मैं कितना ही कुछ कर लूं इसके बिना मेरा काम चलने वाला नहीं है, ऐसी अंदर में तालाबेली लगे, उसका नाम है खटक, है ना? और अपने को अपने परिणामों में तपास कर लेना चाहिए। अपन लोग मुमुक्षु हैं, आत्मार्थी कहलाते हैं, आत्मा को समझने के लिए प्रयत्न करते हैं, अपने को अपने परिणामों में तपास करना चाहिए कि आत्मा की खटक हमारे अंदर में कितनी है, किस मूल्य पर हम आत्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। और आत्मा को प्राप्त करने के लिए मूल्य क्या है, आत्मा को प्राप्त करने के लिए आत्मा की तीव्रतम रुचि, बस तीव्रतम रुचि, वो आत्मा को प्राप्त करने का मूल्य है।
कि जितनी तीव्र रुचि होगी, सोंगानी जी साहब ने लिखा कि जितनी तीव्र प्यास होगी पानी की खोज भी उसी व्यग्रता से होगी, और पानी की जितनी व्यग्रता से पानी की खोज होगी, पहली बात तो प्यास नहीं होगी तो पानी की खोज नहीं होगी, खोज नहीं होगी तो मिलने का प्रश्न ही नहीं, और अगर प्यास हुई और ऐसा हुआ कि ठीक है अभी नहीं मिल रहा कोई बात नहीं दो घंटे बाद पी लेंगे, माने कंठगत प्राण हो जाएं, ऐसी तीव्र प्यास कि पानी के बिना अब जीवन चलने वाला नहीं है, तो पानी की खोज किस भाव करेगा वो। उदाहरण दे रहे हैं अपन कि मान लो अपन जंगल में भटक रहे हैं और वहां जोर की प्यास लगी और लगा कि भैया पानी के बिना अगर नहीं मिला तो प्राण निकल जाएंगे, इतने में एक आदमी आया और उसके पास में अपन ने दो बोतल पानी देखा, हमने उससे कहा कि भैया ये हमें चाहिए, एक बोतल हमें दे दो तुम पानी की, तो उसने कहा जी मैं तो 500 रुपए लूंगा। क्या बोला? कितना? 500 रुपए। कीमत कितनी है? नहीं, कीमत कितनी है, ओरिजिनल कीमत कितनी है? 20 रुपए। अब 20 रुपए का कितना गुना मांगा उसने? 25 गुना अधिक। कि जो आदमी सब्जी मंडी में 10 रुपए पाव की सब्जी खरीदे तो झिकझिक किए बिना नहीं खरीदता, समझना ध्यान से, वो आदमी उस समय के अरे तू 500 क्या तू 1000 ले, लेकिन पानी की बोतल दे, किस बल पर तैयार हो गया वो? बोलो। उदाहरण क्या, जो सब्जी खरीदने जावे ना बाजार में, सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जावे तो 10 रुपए पाव अगर वो सब्जी वाला बोले तो क्या वो तो 8 रुपए पाव दे रहा था, तू 10 रुपए पाव दे रहा, लूट रहा है वो, एकदम 500 रुपए फटाक से निकाल करके देने के लिए तैयार होता है। मैं आपसे पूछता हूं कि उसने वो पानी की कीमत दी है या अपनी आवश्यकता की कीमत दी है? बोलो, पानी की कीमत तो नहीं दी, पानी की कीमत तो 20 रुपया है, और जहां आवश्यकता लगी तो फिर कोई मोल भाव नहीं, तुझे जो लेना हो ले, लेकिन मुझे ये दे। इसी तरह अगर हमें आत्मा की खरे खर आवश्यकता लगे, आत्मा की ऐसी तीव्रतम रुचि लगे, आत्मा को प्राप्त करने का, आत्मा को पहचानने का अंदर से खटका लगे और उस दिशा में हमारा प्रयत्न ना हो, ऐसा कभी संभव नहीं है। और अगर प्रयत्न नहीं होता तो इस ये किस बात को बताता है? कि इस बात को बताता है कि तू आत्मा की बात तो करता है लेकिन सच में तुझे आत्मा चाहिए नहीं। ये अपने परिणामों का निरीक्षण है, है ना? तो उसमें तीव्रतम रुचि, क्योंकि ये रुचि है ना, रुचि अनुयायी वीर्य, एक आपने कहावत सुनी होगी कि रुचि का अनुसरण पुरुषार्थ करता है, जिस दिशा में रुचि होती है उस दिशा में पुरुषार्थ का अपना काम करता है। गुरुदेव श्री की धर्म सभा में एक ही बार गुरुदेव श्री की वाणी सुनकर के सम्यक्त को प्राप्त करने वाले सोगानी जी साहब, एक ही बार गुरुदेव की वाणी, वो भी एक प्रवचन, एक प्रवचन का भी एक वाक्य, राग अने ज्ञान जुदा छे, इस एक वाक्य के आधार पर उन्होंने सम्यक्त को कैसे प्राप्त कर लिया, जरा विचार करना, जीवन पढ़ना उनका, कि अंदर से ऐसी तड़प लगती थी कि या तो मुझे आत्म प्राप्ति यानी शांति की प्राप्ति हो जाएगी या तो देह छूट जाएगी, विकल्प टूट जाएंगे अथवा तो देह छूट जाएगी, इतनी विकल्पों की पीड़ा, आत्मा की अप्राप्ति की इतनी तीव्र खटक लेकर के स्वर्णपुरी के उस सुरम्य वातावरण में वो पहुंचे और जैसे स्वाति नक्षत्र के अंदर सीप के मुख में पानी की बूंद पड़े और वो मोती के रूप में परिणमन कर जाती है, उसी तरह ऐसी रुचि के रुचि का बल लेकर के गुरुदेव श्री की धर्म सभा में पहली बार गए। ध्यान से सुनना, रुचि का महत्व बता रहे हैं इसमें, है ना। जीवन में कभी गुजराती भाषा सुनी नहीं थी और ठेठ काठियावाड़ी बोलते थे गुरुदेव उस जमाने में, जबकि ये बात है ना, बाद में तो गुरुदेव की भाषा में गुजराती पुट आया बहुत, लेकिन पुराने प्रवचन अगर आप सुनोगे तो ठेठ काठियावाड़ी भाषा आती थी, गांव की काठियावाड़ी भाषा, कि जो आज के कई अर्थ, तो अभी मैं किन्हीं शब्दों पे अटक जाऊं तो बहुत से लोगों को पूछना पड़े तब जाके उसका भाव ख्याल में आवे, ऐसे शब्द। और गुरुदेव की वो वाणी सुनकर के उसी दिन वहां सम्यक तो प्राप्त कर लिया। बोलो क्यों, किसका बल था वो? ये अंदर की खटक का बल था। ऐसी खटक अंदर में अपने को जगी कि नहीं जगी, ये कह रहे हैं यहां पे कि पोते अंदर ती खटक राखी ने, वांचन करवानो टाइम गोती लेवो। पहला कदम क्या है? अंदर से खटक रख करके। प्रवचन सार में एक शब्द आया इसके लिए बहुत अच्छा, प्रवचन सार में क्या शब्द आया, उसमें लिखा कि मैंने स्वभाव के लक्ष्य से, ज्ञायक के लक्ष्य से स्वाध्याय करना, स्वलक्ष्य से स्वाध्याय करना। स्वाध्याय के लिए स्वाध्याय नहीं है, मुझे ज्ञान बढ़ जाए और मैं ज्ञान बढ़ा करके दूसरों को समझा दूं, कि ये अभिप्राय रख करके स्वाध्याय नहीं करना। मैं आत्मा को समझ करके अपना हित कैसे कर लूं, इस प्रयोजन से वो स्वाध्याय करता है। तो वो यहां पे कहा कि खटक रख करके वांछन करने का टाइम गोती ले, काम एवा न होवा जोइए के पोता ने विचार वांचन मां दखल खाए। मैंने ऐसे काम अपने सिर पे मत लेना, कौन से, कि जिससे तुझे विचार और वांचन में भी दखल पैदा होने लगे। ख्याल में आया? मैंने उतना अपने को सुरक्षित रखना कि मेरे को इतना समय वांचन और विचार के लिए चाहिए, ये समय निकलने के बाद यदि कुछ समय बचता है तो मैं अपने लौकिक कार्यों में वो समय दूंगा, नहीं तो मेरा ये प्रयोजन पहले है, बाद में बाकी सब काम है। क्यों भाई साहब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जितनी उम्र अपन लोगों की निकल चुकी, ये भी गुरुदेव का वाक्य बोल रहा हूं मैं, कि जितनी उम्र अपन लोगों की निकल चुकी, अब उतनी उम्र इस पर्याय में शेष नहीं बची है। आगे समझ में है ना? तो अभी क्या करना, अभी आत्महित की दिशा में अपने को मोड़ लेना। मैंने कितना बढ़िया मार्गदर्शन दिया है वो जरा देखो, कि काम एवा न होवो होवा जोइए के पोता ने विचार वांचन मां दखल थाय। ऐसे काम नहीं होना चाहिए। एटला बधा काम न होए के वांचननो के विचारवानो टाइम न मले। कितना बढ़िया, कितना कितना स्पष्ट मार्गदर्शन है कि इतने अधिक काम अपने माथे मत लेना, इतने अधिक प्रपंच में मत पड़ना कि भाई तुझे विचार करने का, तुझे जिनवाणी के स्वाध्याय का, गुरुदेव की वाणी सुनने का तुझे समय ना मिले, ऐसा काम अपने माथे मत लेना, टाइम ना मिले। जो तेवू होए तो पोते काम ने ओछा करीने निवृत्ति मले, एवू करवो जोइए। अभी क्या करें साहब, काम तो बहुत है, अभी क्या करें हम? तो कितना बढ़िया मार्गदर्शन दिया है कि जो एवू होए, केवू होए, कि एवू होए कि तेरे को काम इतने हो कि तेरे को वांचन करने का और विचार करने का समय नहीं मिलता हो तो क्या करना? तो बैंश्री का मार्गदर्शन कि जो एवू होए तो पोते काम ने ओछा करीने, कम करो, निवृत्ति मळे, है ना। गुरुदेव बोलते थे ना, आ तो निवृत्ति नो मार्ग छे, है ना। बाणियाना हाथ मां जैन धर्म आव्यो, बाणिया घुचाई गया व्यापार मां। जापानी का उदृष्टान देकर के बोलते थे, जापानी इतिहासकार ने बोला कि जैन धर्म तो ये तो क्षत्रियों का धर्म है, और क्या है जैन धर्म? आत्मा की अनुभूति का नाम जैन धर्म है। बोलो। गुरुदेव बोले कि उस जापानी को तो खबर पड़ी कि आत्मा की अनुभूति का नाम जैन धर्म है, इन संप्रदाय में रहने वालों को खबर नहीं है कि जैन धर्म क्या है। गुरुदेव उलाहना देते थे अपन लोगों को, है ना। तो देखो ये कितना बढ़िया लिखा कि तो काम ने ओछा करी ने निवृत्ति मळे। बस मूल बात क्या है कि निवृत्ति काय के लिए मिले, स्वाध्याय मनन चिंतन के लिए, अपना हित कैसे हो जाए, अनंत जन्मों का चक्र, अनंत भवों को मिटाने का काम इस एक भव में करना है, बराबर ना। अनंत अनंत जन्म मरण के चक्र किस भव में मिटाना, एक भव में, और एक भव में भी कितना भव निकल चुका अपना, कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में, जिया कब तक उलझेगा संसार विजल्पों में, कितना कितना भव तो निकल चुका, और कितना जितना बचा उसमें से भी कितनी उलझने अपने जीवन में है। कृपालु देव का एक बहुत अच्छा वाक्य है, जिंदगी छोटी है जंजाल अधिक है, जंजाल कम कर तो सुखमय जिंदगी लंबी लगेगी, है ना। ना हर ज्ञानी ने अपने आत्मा के हित के लिए अपने को कैसा कैसा मार्गदर्शन दिया, विचार करो इन ज्ञानियों को क्या फर्क पड़ता था, इनकी तो अकारण करुणा है ना। इनको अगर हम अपनी आत्मा का हित साध लें तो ज्ञानियों को क्या मिलेगा, अपने को समय दर्शन हो जाए और अपने को अतिंद्रिय आनंद आवे। समझ लो गुरुदेव की वाणी से अपने को समय दर्शन हुआ, ठीक है, और 10 लोगों को समझ लो समय दर्शन हुआ और 10 लोगों को आत्मा की अनुभूति हुई, गुरुदेव को उसको गुरुदेव को उस आत्मा के आनंद का कितना परसेंट मिलेगा ये बताओ जरा। फिर क्यों ज्ञानियों को ऐसी करुणा आती है कि अरे भाई जो स्वाद चैतन्य का अतिंद्रिय आनंद का जो स्वाद उन्होंने चखा और अनंत भव का चक्र जिन्होंने खत्म कर दिया, पंच परावर्तन में से जिनकी गिनती खत्म हो गई, अब सम्यक दर्शन हुआ कि पंच परावर्तन द्रव्य क्षेत्र काल भव और भाव परावर्तन होते कि नहीं, अब ज्ञानियों को पंच परावर्तन में उनकी गिनती नहीं होती। अरे जिनने अपने जीवन में अतिंद्रिय आनंद का रस चखा तो जगत के जीवों को दुखी देख करके कि देखो क्या गजब है कि भगवान जैसा वैभव सबके पास होने पर भी, सभी आत्माएं स्वभाव से भगवान होने पर भी अपनी भगवत सत्ता को भूल करके दर दर का भिखारी बनकर के फिरता है, आया ऐसी करुणा भाव से इन ज्ञानियों ने अपने को मार्गदर्शन दिया। 21 या 22 नंबर का बोल है ना वचनामृत में, चैतन्य की चैतन्य में से परिणमित हुई भावना, ऐसी यथार्थ भावना हो तो फलती ही है, नहीं फले तो क्या होगा कि 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। ये भैंश्री ने कहा। अरे अमृत चंद्र आचार्य ने कहा कि तू एक बार हमारे कहे अनुसार 6 महीने आत्मा का अभ्यास कर। कितना टाइम लिया उनने, 6 महीने अधिकतम, 6 महीने आत्मा का अभ्यास कर, तुझे अवश्य प्राप्ति होगी होगी और होगी, लेकिन कैसा, जैसा हम कहते हैं वैसा। पंडित टोडरमल जी साहब ने लिखा कि जो जीव जिनेंद्र भगवान के उपदेश के अनुसार मोक्ष का उपाय करता है, पुरुषार्थ करता है, उसे अन्य कारण मिलते ही मिलते हैं और उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिमत जी का भी वाक्य है, तेरे को मोक्ष नहीं मिले ना 15 भाव में, ऐसा कुछ है ना, तो मुझसे ले जाना, तो मुझसे ले जाना, मैंने उनके पास रखा है अपना मोक्ष, यानी वो कितने निशंक हैं, क्योंकि भाई जो वो मार्ग है उस मार्ग को उन्होंने प्राप्त किया है और जिन्होंने प्राप्त किया है वो हमें प्राप्त करने की विधि बता रहे हैं। अपने को एक डॉक्टर का भरोसा होता है, डॉक्टर कहता है देखो भैया आपको बीमारी है, आप ये इलाज करो और आप 3 महीने तक बेड रेस्ट करो, हिलना नहीं, चलना नहीं, डोलना नहीं, बोलना नहीं, कुछ नहीं करना, 3 महीने आप बेड रेस्ट करो, आपकी बीमारी बिल्कुल दूर हो जाएगी। मेरा प्रश्न ये कि वो डॉक्टर सत्य अनुव्रत का धारी है कि सत्य महाव्रत का धारी है, जरा बताना जरा। कि वो जो 3 महीने की गारंटी ले रहा है ना भाई साहब, कि 3 महीने बाद वो डॉक्टर हमें दिखाने के लिए बचेगा भी कि नहीं बचेगा, खुद की गारंटी है उसकी, लेकिन उसकी बात पर अपने को भरोसा आता है, आता है कि नहीं। वो डॉक्टर जो कहे वो दवा अपन लेने के लिए तैयार हैं। ये सर्वज्ञ परमात्मा के पुत्र अमरचंद्र आचार्य, कुंद आचार्य, गुरुदेव श्री, पंडित टोडरमल जी, बहन श्री, श्रीमद जी, सब जितने भी ज्ञानी धर्मात्मा हैं, कि ये सब ज्ञानी धर्मात्मा एक धारा से अपने को इस बात की गारंटी दे रहे हैं। और गारंटी कब दे रहे हैं कि जब उन्होंने उस आत्म स्वभाव को प्राप्त करके उसका आनंद चखा है, माने वो माल चख करके हमें चखाने के लिए बोल रहे हैं, है ना। हमें उनकी बात पर कितना भरोसा आता है ये विचार करना। गणेश साहब भरोसा नहीं आता तो फिर अपन सुनने आते क्या इधर। देखो, अपने परिणामों को खुद तपास करना। अगर अपने को सच में अंदर से भरोसा आवे और उस दिशा में हमारा कदम ना बढ़े, ऐसा कभी होता नहीं है, है ना। वो यहां पे कह रहे हैं कि भाई टाइम न मिले जो तेव होए तो पोते काम ने ओछा करीने निवृत्ति मिले एवो करवो जोईए। बहुत गजब का मार्गदर्शन है। केटलाय काम छोड़वा जोईए, कितना कितना स्पष्ट कि कितने ही काम के छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। फिर कहा पण केटला छूटे ते पोतानी शक्ति प्रमाणे छे, ये भी ध्यान रखना। नहीं तो क्या होता है, बहुत से लोग कह भैया हमको तो निवृत्ति लेना है, हमको तो निवृत्ति लेना है, अब हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, तो वो काम तो छोड़ बैठे और तत्व का रस नहीं था तो क्या हुआ, डिप्रेशन में आ गए। वो काम नहीं है, ये मार्ग डिप्रेशन में लाने का मार्ग नहीं है, ध्यान देना। बैलेंस साधना पड़ेगा। बैलेंस क्या साधना पड़ेगा कि भाई हमारा प्रयोजन क्या है, निवृत्ति लेने का प्रयोजन क्या है, अच्छा बताओ। काम धंधा छोड़ने का प्रयोजन क्या है, हम कोई भी लौकिक काम को घटाते हैं, लौकिक काम कम करते हैं, हमारा प्रयोजन क्या है, किस लिए कर रहे हैं हम ये काम। आत्म स्वभाव की प्राप्ति के लिए, आत्म स्वभाव के अभ्यास के लिए, शास्त्र का वांछन मनन करने के लिए, ठीक है। और शास्त्र का वांछन मनन नहीं करके फिर दूसरे धंधे में लग जाए, गोरख धंधे में, तो क्या मतलब हुआ। यह माता जी ने अपने को प्रेरणा दी कि वो अपनी शक्ति प्रमाण, कि तेरे परिणाम, शक्ति प्रमाण का मतलब क्या कि तेरे परिणाम की योग्यता देखना। ऐसा नहीं हो कि आत्मचिंतन में भी मन नहीं लगे और लौकिक निवृत्ति भी लेकर के बैठ जावे तो फिर तकलीफ खड़ी होगी। तो क्या करना कि धीरे 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 अभ्यास को बढ़ाना, पहले इधर का रस खड़ा करना, और इधर का रस खड़ा करेगा तो उधर का रस टूटेगा, उसी हिसाब से अपनी निवृत्ति का काल बढ़ाना, निवृत्ति का काल बढ़ाना, एकदम जल्दबाजी किसी काम में करना नहीं। देखो ये जो मार्ग है ना, ये मार्ग पूरा विवेक का मार्ग है, ये भावुकता का मार्ग नहीं है, ये समझ लेना बहुत अच्छी तरह से। कि भावुकता में लिया गया कोई भी निर्णय वो हमें सही दिशा नहीं देगा। ये कितना जोरदार मार्गदर्शन है, है ना। देखो कि पोतानी शक्ति प्रमाणे छे, पोताने निवृत्ति मळे, वांचन विचारनो टाइम मळे, एवी जातना मर्यादित काम होए, क्योंकि ग्रस्त भूमिका है। अब ग्रस्त भूमिका में कोई मुनि जैसा जीवन जीना चाहेगा तो वो संभव नहीं है, वो भूमिका नहीं है। और ऐसा अगर प्रयत्न करेगा तो सिवाय आकुलता के कोई मोल नहीं लेगा, और दूसरा आकुलता मोल लेगा। भूमिका जो है होता क्या, देखो गुरुदेव श्री ने जहां अपने को तत्व ज्ञान दिया वहीं गुरुदेव श्री ने अपने को भूमिकाओं का ज्ञान भी कराया। एक बहुत अच्छा प्रवचन है गुरुकान दृष्टिमान के 7वें भाग में, वो प्रवचन छपा है। इतना बढ़िया प्रवचन है, उसमें उन्होंने कहा कि जो तेरी भूमिका है और यदि तू अपने से ऊंची भूमिका के काम करके अपने को ऊंचा दिखाना चाहता है, मानना चाहता है, मनवाना चाहता है, वो कहते मिथ्यात्व की पुष्टि होती है इसमें। क्यों? क्योंकि भूमिका नहीं है ना। अभी बात काहे की चल रही, अभी बात चल रही तत्व विचार की भूमिका की, कि तत्व विचार के योग्य निवृत्ति चाहिए, है ना। अब उसके बदले कोई ये सोच के बैठ जाए कि ठीक है अपने को तो मुनि महाराज भी निवृत्त रहते हैं ना, उनको कोई काम नाम तो है नहीं, तो अपन भी बस ऐसे हो जाए, तो आकुलता मोल लेगा ना? तो तत्व दृष्टि और तत्व दृष्टि के साथ में किस भूमिका में क्या संभव है, तो यहां पे ये इस बात को लिखा। बस अपना उद्देश्य वर्तमान में क्या है कि हमको तत्व विचार के लिए और शास्त्र अभ्यास के लिए समय मिले। और गुरुदेव श्री बोलते थे बे चार कलाक शास्त्र नो स्वाध्याय जोइए, अपने को इतना समय मिले और वो समय फिर ईमानदारी से पूरा तत्व व्यास में लगे, बस उस समय और कोई विकल्प नहीं। ये एक पद्धति, ये ज्ञानियों का मार्गदर्शन अपने लिए, अपन सभी के लिए है ना। तो एवी देखो क्या लिखा कि टाइम मिले एवी जातना मर्यादित काम होए, ग्रस्ताश्रम में अमुक प्रकार ना काम तो होय छे, कि नहीं होवे तो फिर ये ग्रस्ताश्रम ही नहीं कहलाएगा, ये ग्रस्ताश्रम है। ग्रस्ताश्रम में ग्रस्ताश्रम की जिम्मेदारियां होती है, तो तद अनुकूल कार्य तो होते हैं, उसका निषेध नहीं है, पण पोताने निवृत्ति माटे टाइम ज न मळे आने बोझो बदी जाए तेव न होए। बस ये दो मार्गदर्शन दिए कि ग्रस्त दशा में ग्रस्त की भूमिका के योग्य कार्य तो होंगे, लेकिन ऐसा नहीं होवे कि अपने को निवृत्ति के लिए समय ही न मिले, ऐसा नहीं होवे, और बोझा बढ़ जाए ऐसा नहीं होवे। नहीं तो क्या होगा, बोझा बढ़ जाएगा तो स्वाध्याय करने बैठेंगे तब भी क्या याद आएगा, वही सब याद आएगा। वो से लोग पूछते हैं कि क्या करें साहब, एक बार बताओ, ये माला फेरने बैठते हैं हम लोग, प्रश्न करते हैं वो लोग क्या कि माला फेरने बैठते हैं ना, तो पूरे दिन में जो विकल्प कभी नहीं आए हमें, समझ में आया कि नहीं, कि वो सारे विकल्प उसी समय आकर के खड़े होते हैं जिस समय हम माला फेरने बैठते हैं, कि साहब बताओ इसका क्या कारण है। मैंने कहा भाई साहब विकल्प तो लाइन से लगे हुए थे आपके कुंडी खटखटाने के लिए, लेकिन सवाल यह था कि आप फ्री नहीं थे, आप फ्री नहीं थे, अभी आप फ्री हो गए तो लाइन से चले आ रहे हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ये किस बात को बताता है, ये इस बात को बताता है कि तू माला तो फेर रहा है लेकिन विकल्पों का बोझा तेरा कम नहीं हुआ है, इसलिए उस माला फेरने के काल में भी तुझे वो विकल्प आते हैं कि जो पूरे दिन में कभी नहीं आते हैं, है ना। इसलिए कहा बोझा कम करना, होने योग्य होता है। गुरुदेव ने अपने को कितने मंत्र दिए, मैं कह गुरुदेव के मंत्रों को हम अपने जीवन में आत्मसात करें, जो मंत्र गुरुदेव ने अपने को दिए, और उसके बाद कोई जगत का कोई संयोग, जगत की कोई परिस्थिति अपने को दुखी करके बता दे, होने योग्य होता है, अनहोनी होती नहीं, होनी कभी टलती नहीं, है ना। पर्याय जिस क्रम में जो होनी है वो होगी, तू परद्रव्य का कर्ता नहीं, परद्रव्य तेरी सत्ता में आकर के तेरा कुछ करता नहीं। अब बताओ ऐसे ऐसे अचूक सिद्धांत, एक एक समय की पर्याय की स्वतंत्रता को बताने वाले सिद्धांत, काय का बोझा सहज है। और दूसरी बात कि भाई साहब संयोगों में हमारी चलती कहां है, संयोगों में हमेशा चलती है कर्म के उदय की, और स्वभाव में हमेशा चलती है पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ धर्म के, धर्म कभी भी पुरुषार्थ के बिना नहीं होता, और संयोग कभी भी उदय की अनुकूलता के बिना नहीं मिलते। हम कितना ही संयोगों में सिर पचाएं, अगर हमारे उदय अनुकूल होगा तो संयोग मिलेंगे, उदय अनुकूल नहीं होगा तो संयोग नहीं मिलेंगे। तो उदय संयोगों में काय की किसकी चलती है? कर्म के उदय की। और धर्म में काय की चलती है? तो पुरुषार्थ की। अभी हमने उल्टा कर दिया इसका, क्या कर दिया कि धर्म में जब धर्म के धर्म करने की बात आवे, भाई आत्मा को समझने का कैसा, वो तो क्रमबद्ध पर्याय में जब होना होगा तब होगा, है ना। और संयोग के 10 बजे ऑफिस का टाइम और 10:15 मंदिर में बच जाए, फिर क्या होगा? उस समय जो होना होगा नहीं आए समझ में कि उस समय क्यों नहीं याद नहीं आता कि मेरा ऑफिस में जिस समय क्रमबद्ध पर्याय में पहुंचने का काल होगा तब मैं पहुंचूंगा। उस समय क्या आया? अरे क्या लेट कर दिया है प्रोग्राम को, कैसा कर दिया है, क्या कर दिया है ये, क्यों वहां क्यों नहीं प्रयोग करते हम कि धर्म क्षेत्र में पुरुषार्थ की चलती है, वहां तो कर्म का उदय अथवा क्रमबद्ध पर्याय लगाते हैं, और संयोग में कर्म के उदय की ही चलती है, वहां कहते हैं कि भाई साहब ठीक है कर्म का उदय तो होगा, वो तो मिलेगा कर्म के उदय के अनुसार ही मिलेगा, लेकिन अपने को पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा कि नहीं? बिना पुरुषार्थ के मिल जाएगा? कर्म का उदय लाकर के भेज देगा पैकेट? हैं? देखो भाई प्रथमान योग पढ़ना जरा, धन्य कुमार की कथा पढ़ना, अभी धन्य कुमार चरित्र अपनी नेट पे भी डला है, पढ़ लेना उसको, है ना। धन्य कुमार के जन्म के पहले एक कोई बहुत बड़ा सेठ था और उसके सब परिवार में सब समाप्त हो गए, अंतिम एक आदमी बचा, तो उसने किसी मुनिराज से पूछा कि ये करोड़ों रुपए की जो संपत्ति है मेरी, कि इसका मालिक कौन होगा, मेरे बात तो कोई बचा है नहीं परिवार में। तो उस मुनिराज ने कहा कि उज्जैन नगरी में अमुक अमुक सेठ के यहां पर एक धन्य कुमार नाम का बालक जन्मेगा और वो तुम्हारी संपत्ति का मालिक होगा। आप आश्चर्य करोगे, धन्य कुमार बालक जन्मा, जन्मने के बाद थोड़ा बड़ा हो गया, 6 भाई और थे, तो 6 भाई खूब कमाते थे और वो कुछ नहीं करता था, तो 6 भाई कहते हम कमाते हैं और ये खाली पूजा पाठ ये सब खर्च करता रहता है, हम कमाते हैं ये खर्च करता रहता है। तो उस धन्य कुमार की माता ने अपने पति से कहा कि इसको भी कुछ कमाने के लिए भेजो, तो 1000 दीनार उस जमाने में होती थी, 1000 दीनार दी। व्यापार तो कभी किया नहीं उसने, उसने कहा कि क्या करना है इसका, कि कुछ नहीं करना, ये पैसे देना, जो चीज मिले वो खरीद लेना, फिर क्या करूं कि फिर वो चीज बेचना, फिर जो चीज मिले वो खरीद लेना, कि फिर क्या करूं कि ऐसा करते करते जब सूर्यास्त का समय होने को आवे तो जो चीज तेरे पास बची वो लेकर के घर पे आ जा। 2-3 चीजें उसने खरीदी और लास्ट में वो जो परिवार वाला था ना, जिसकी मैंने अभी उदाहरण दिया कि वो उसका अंतिम संस्कार हो गया, मतलब वो मर गया था, तो उसको जलाने के लिए शमशान घाट में ले गए और उसका एक पलंग था सड़ा गला सा, और वो सड़ा गला सा पलंग हरिजन को, भाई शमशान घाट का जो सामान होता है उसी को रहता है, तो वो उसको बेचने के लिए बाजार में आया था। तो धन्य कुमार को ये तो पता नहीं कि क्या खरीदना क्या बेचना, उन्होंने तो कहा था खरीदना बेचना खरीदना बेचना, उसने वही खरीद लिया और भोजन का समय हो गया तो साहब लेकर के गंदा सा पलंग लेकर के आ गया। वो 6 भाई ने कहा कि अच्छा मूर्ख पल्ले पड़ा, अच्छा मूर्ख पल्ले पड़ा, पिताजी ने आज 1000 दीनारें दी और आज की आज ही इसने, और माता तो माता होती है, आहा आज मेरा बेटा व्यापार करके आया और भाई साहब बनाओ हलवा आज इसके लिए, गुरुदेव बोलते ना करो लापसी आज तो ऐसा। तो अभी क्या, अब माता वो पलंग के पहिए को रगड़ रगड़ के धोरी, रो भाई दांत बिच बिचारे अंदर ही अंदर, कैसा नालायक है, ऐसा है ऐसा है। और इतने में भाई क्या हुआ कि वो पलंग का एक पहिया माता के हाथ से गिरा और गिरते ही वो फूटा, और फूटते ही उसमें से रतन की बरसात होने लगी, उसमें से रतन भरे थे उसमें वो निकल गए, और उसमें एक पत्र मिला, कौन सा पत्र, वही पत्र कि भाई मेरी, मैं फलाना 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 हूं, मेरा वहां पर आवास है, ये मेरी संपत्ति थी, मैंने मुनिराज से पूछा इस संपत्ति का मालिक कौन होगा, उन्होंने धन कुमार का नाम लिया, तो ये संपत्ति धन कुमार जो भी वो सब आया, वो सेठ जी लेकर के राजा के पास गए। उस जमाने के राजा बड़े नीतिवान होते थे, तो उनने कहा कि साहब ऐसा ऐसा है, अरे ये संपत्ति आप मंगा लीजिए, राज्य की संपत्ति है। तो राजा ने कहा कि भैया धन्य कुमार के जन्म के पहले जब इस संपत्ति का वारिस अमुक व्यक्ति मुनिराज के कहने से धन्य कुमार को घोषित कर चुका, मैं इसका मालिक कहां से हुआ? और वो संपत्ति उसे मिली। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब कि कौन सा पुरुषार्थ करने गया था वो, बताओ जरा। अभी तो दूसरे भाव में है, यहां आएगा और उसका नाम धन्य कुमार होगा, अमुक सेठ का बेटा होगा, ये सब पहले से नक्की था कि नहीं था? संयोग में कभी भी अपना कुछ नहीं चलता, और धर्म में अपना पुरुषार्थ के बिना कुछ नहीं होता, हम उल्टा करते हैं। तो यहां पर क्या कहते हैं देखो, पण पोता ने निवृत्ति माटे टाइम ज न मळे और बोझो बदी जाए तेवू न होए, काम छोड़वा के न छोड़वा ते तो पोतानी रुचि ऊपर छे। कोई आग्रह नहीं छोड़ने का, मतलब भाई हमको हमारा उद्देश्य क्या है? तो कहते हैं कि हमारा उद्देश्य तो केवल तत्वाभ्यास के लिए समय मिले, बस ये उतना उद्देश्य है। तुम सब काम करके करते हुए भी तत्वाभ्यास के लिए समय निकालते हो, बहुत बढ़िया। नहीं निकल पाता है तो तत्वाभ्यास को गौण नहीं करना, काम जितने गौण किए जा सकते हैं करने का प्रयास करना, उसमें भी कोई प्रतिबंध नहीं कि अपनी रुचि के ऊपर है वो भी, कि तू कितना समय अपने लिए निकाल सकता है। बाकी गृहस्थाश्रम मां पोता ने वाचन विचार नो टाइम मळे, ये आत्म प्राप्ति के उपाय में उत्तर दे रहे हैं। क्या गृहस्थाश्रम मां, मुनि की तो बात ही नहीं, क्योंकि मुनि का तो काम ही वही है ज्ञान ध्यान और अध्ययन। गृहस्थाश्रम मां पोता ने वांचन विचार नो टाइम मळे एटलू तो होऊ जोईए। कितना सुंदर मार्गदर्शन है ये, मैंने पढ़ा तो मैंने कहा ये बहुत अच्छा बोल है, देखो कितना गजब का है। एक बात तो ये कही, अब दूसरा उसमें एक और इसी के आगे का एक प्रश्न किया कि राग में सहज एकाकार थई जवाय छे, हम तो साहब जो राग का परिणाम आता है हम तो उसी के साथ एकाकार हो जाते हैं, उसी में ऐसा तन्मय हो जाते हैं, उसी में रच पच जाते हैं कि तेना थी जुदो पड़वानु अभ्यास केवी रीते करवो जोइए। देखो पहले आत्मा की प्राप्ति की बात करी, अब वही बात कि राग में हम ऐसे एकाकार हो जाते हैं तो अभी हम राग से भिन्न कैसे पढ़ें, उसका अभ्यास कैसे करें, क्या पद्धति है? मैंने कल भी कहा था कि देखो बहन श्री के सामने इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा आए, क्यों? क्योंकि गुरुदेव के सामने गुरुदेव की जो तत्व चर्चा चलती थी ना उसमें तात्विक प्रश्न ज्यादा होते थे, है ना? गुरुदेव के सामने ऐसे प्रश्न कम करते थे लोग, तात्विक प्रश्न ज्यादा होते थे, और बहन श्री के सामने इस तरह के प्रश्न ज्यादा होते थे जो गुरुदेव के सामने नहीं कर सकते थे, थोड़ा संकोच होता था, नहीं करते थे। बहन माता के सामने बालक अपनी हर बात कह देता है, ऐसे बहन श्री के सामने हर मुमुक्षु खुल करके अपनी बात कहता था, अपनी परिणति की बात कहता था कि हम तो राग के साथ एकाकार हो जाते हैं। अब एकाकार हो जाते हैं, आप तो राग से भिन्न पढ़ने की बात करते हो कि तू राग से पृथक हो जा। क्यों पृथक हो जा? क्योंकि तेरा स्वरूप राग से पृथक है, राग उत्पन्न करे ऐसा तुझमें कोई गुण ही नहीं है, है कोई गुण ऐसा? राग उत्पन्न करे ऐसा कोई गुण नहीं आत्मा में, और गजब है कि राग उत्पन्न हो रहा है, पर्याय में राग हो रहा है, और आत्मा में ऐसा कोई गुण नहीं कि जो राग को उत्पन्न करे। 47 शक्तियों के प्रवचन में एक एक शक्ति में राग का अभाव है, एक एक शक्ति में व्यवहार का अभाव है, एक एक शक्ति में 23-23 बातें गुरुदेव ने उतारी ना, वो ऐसी तो उतारी, कोई गुण नहीं तो, और फिर भी पर्याय में ऐसा विकार हो गया, अपनी योग्यता से अपनी भूल से ऐसा विकार हुआ तो कहते हैं उसके साथ हम एक में एक हो जाते हैं, तो उससे पृथक पढ़ने का अभ्यास केवी रीते करवो जोइए ते समझावा कृपा करशो जी। ये प्रश्न किया। तो अब ये प्रश्न किसके लिए, कि जिसे सच में राग से पृथक पढ़ना है उसका ये प्रश्न होना चाहिए, अपने को भी राग से पृथक पढ़ना हो तो अपना भी ये प्रश्न है। अमुक मुमुक्षु ने प्रश्न किया, वो बात ठीक है कि किसी मुमुक्षु ने प्रश्न किया, लेकिन ये प्रश्न हमारा प्रश्न भी है कि नहीं है, अथवा हमें राग से पृथक पढ़ना है, हमें आत्म स्वभाव की साधना और आराधना करनी है। अभी तक हम राग के साथ एकाकार होते रहे, पाप के परिणाम आने से अपने को पापी मानते रहे, पुण्य का परिणाम आने से अपने को पुण्यात्मा मानते रहे, क्रोध का परिणाम आने से क्रोधी मानते रहे, मान का परिणाम आया मानी मानते रहे, जिस तरह का परिणाम आया हम उस तरह से अपनी आत्मा को मानते रहे। आया? लेकिन क्या कभी हमने ये विचार किया कि पाप के परिणाम आए और पाप के परिणाम आकर के चले गए? अगर आत्मा पाप के परिणाम से पापी होता तो पाप के नाश के साथ ही आत्मा का नाश हो जाना चाहिए था। आई बात समझ में? पुण्य का परिणाम आया और पुण्य के परिणाम से यदि आत्मा पुण्यात्मा होता तो पुण्य के परिणाम का तो नाश होगा, क्योंकि कोई भी परिणाम हो उसका जीवन क्षण एक समय से अधिक नहीं है, है ना। और अगर उस परिणाम के साथ आत्मा एक में एक हो जाए तो उस एक समय के परिणाम की विदाई के साथ आत्मा का भी विदाई समारोह हो जाना चाहिए, आत्मा का भी सत्ता का नाश हो जाना चाहिए। लेकिन ये परिणाम आए और गए, आए और गए, आए और गए, और भगवान आत्मा ऐसा का ऐसा रहा। इनको बोलते हैं आगंतुक परिणाम। पंचाध्याय में रागादि भावों के लिए आगंतुक शब्द का प्रयोग किया, आकर के चले जाने वाले ये आए हैं, मैं पहले से हूं, ये एक समय रहते हैं और एक समय रह करके चले जाते हैं, ये आए उसके पहले भी मैं था, इनके आने के काल में भी मैं हूं और इनके चले जाने के काल में भी मैं तो रहने ही वाला हूं। क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले क्या परिणाम था, थोड़ी देर पहले अपने को जो परिणाम था, अभी उस परिणाम का तो अभाव हो गया, लेकिन उस परिणाम को जानने वाला ज्ञान विद्यमान है कि नहीं है? तो बोलो, आत्मा उस परिणाम के साथ एक में कहां है? उस विकार के साथ आत्मा एक में कहां है? क्योंकि परिणाम तो चला गया और परिणाम का ज्ञान तो है अभी कि मुझे ऐसा परिणाम आया था। अपने को किसी के प्रति गुस्सा आ जावे और थोड़ा माथा ठंडा होवे तो फिर अपन क्या करते हैं, दूसरे दिन अपने को मिला हो भाई, ए भाई कल हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने आप पर बिना वजह गुस्सा किया। देखो गुस्से का परिणाम चला गया, चला गया, और उसके बाद गुस्से को जानने वाला विद्यमान है कि नहीं है? मैं कौन हूं? वो गुस्से का परिणाम जो चला गया वो हूं, जो वो जो जानने वाला, जो जिसकी सत्ता अभी भी है, परिणाम चला गया और उस परिणाम को जानने वाला अभी विद्यमान है, मैं हूं वो। ऐसा निर्णय करे तो राग में एकाकारता कहां होगी? तो ये इस संबंध में प्रश्न उठाया गया कि भाई राग के साथ में हम एकाकार हो जाते हैं तो उससे भिन्न पढ़ने का अभ्यास केवी रीते करवो जोइए। वो पद्धति के बारे में ये प्रश्न किया है कि उस पद्धति को समझाने का प्रयत्न करो, है ना। तो ये जो इसका उत्तर है बहुत गंभीर और बहुत गजब का उत्तर है, थोड़ा बड़ा भी है, तो इसकी चर्चा हम कल की स्वाध्याय में करते हैं।
सुख धाम अनंत।